ओम शांति, ओम शांति। कुछ दिनों से बाबा की मुरली में विशेष याद पर जोर दिया गया है। याद के फायदे क्या है वो सब बाबा ने बताए हैं। फिर याद के, बाबा की याद के साथ वर्षा भी याद करो, वो भी बाबा ने बताया। पर आज की जो मुरली है वो है सर्विस सर्विस सर्विस। बाबा ने तीन बार कहा है सर्विस सर्विस सर्विस। बच्चों को सर्विस भी उतनी ही करनी है। शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। क्या हुआ, नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है भाई? बाबा को प्रत्यक्ष भी करना है तो उसके लिए सेवा तो करनी है। और हम सब ने क्या गारंटी की है कि हम अपने योग बल से भारत को स्वर्ग बनाएंगे। सब ने गारंटी की है ना कि हम अपने योग बल से भारत को स्वर्ग बनाएंगे। तो अगर योग बल से भारत को स्वर्ग बनाना है तो फिर उतनी सेवा तो करनी पड़ेगी, सबको पैगाम पहुंचाना पड़ेगा। तो उस समय बाबा ने कितनी ताकीद की थी। गारंटी तो बहुत कर ली, बड़ी बड़ी बातें हम कहते हैं लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं, वो भी बाबा ने आज सावधान किया है। तो फिर बाबा ने उसमें एक माया का विघ्न भी बताया है। सेवा तो चलो करते हैं बच्चे, और सेवा के लिए अच्छे अच्छे प्लान्स भी बनाते हैं, आपस में मीटिंग भी करते हैं ना, सेमिनार बाबा कहते थे, कैसे सेवा को आगे बढ़ाएं। लेकिन फिर उसमें विघ्न क्या आता है, माया अड़चन डालती है। कौन सा अड़चन कौन डालती है? माया नाम रूप में फंसा देती है। आपस में मिलके सेवा करते हैं भाइया और बहन, तो आपस में एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, नहीं उनके गुण हमको बहुत अच्छे लगते हैं, वो अच्छा समझाती है तो वो बहुत अच्छी सेवा कर रही है, लेकिन अंदर में है नाम रूप की बीमारी। और केवल भाई और बहन के बीच में नाम रूप नहीं, बहन बहन के बीच में भी नाम रूप हो जाता है, भाई भाई के बीच में भी। एक दो से लगाओ, एक दो के प्रति झुकाओ, ये सब भी हो जाता है। ये माया का विघ्न है जिसको बाबा ग्रहचारी कहते हैं। तो सेवा करते करते फिर क्या होता है, जब माया की ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है तो फिर सेवा ही छोड़ देते हैं। हाँ, क्योंकि ग्रहचारी बैठ गई है, इतनी सेवा करते थे लेकिन ये जो माया बीच में आ गई ना, नाम रूप की बीमारी की, जिसके कारण फिर वो जो उमंग उत्साह वो खत्म हो जाता है। तो आज बाबा ने सावधान भी बहुत किया है। सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। और बाबा के, तुम्हारी ये रूहानी गवर्नमेंट है तो जैसे वो गवर्नमेंट वाले उनकी अपनी कैबिनेट मीटिंग होती है ना, तो कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या राय निकालते हैं, भारत को और अच्छा कैसे करें और अच्छे प्लान्स कैसे बनाएं और अच्छे क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाएं, तो जैसे वो गवर्नमेंट अपना अपनी मीटिंग्स करती है तुमको भी ऐसे करना है। तो बाबा ने भी आज उसके लिए भी ताकीद की है। तो देखो बाबा ने ये कब कही होगी मुरलियाँ, लेकिन उस समय जो बाबा ने प्रेरणा दी थी, आज देखो कैसे वो प्रेरणाएं काम कर रही है, कितनी सेवाएं आज हो रही है, बाबा की सेवा बढ़ती जा रही है। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 26/8/2026 है। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो, सब ने गारंटी की है ना कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, जहां एक धर्म एक राज्य होगा। तो गारंटी की है, उस गारंटी के मुताबिक हम क्या कर रहे हैं? फिर बाबा ने ये मुरली में पूछा है, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा? प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? वो माया का अगर विघ्न न हो तो बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, बहुत कमाल कर सकते हैं। तो माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? तो उत्तर है, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान। फिर इच्छा होती है ना, मेरा मान हो, मेरा नाम हो, मेरी मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो देह अभिमान में ना ये बड़ा विघ्न माया का है। माया देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाने का काम करती है। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वे बहुत कमाल कर दिखा सकते हैं। पर माया का ये विघ्न आया, नाम रूप में फंसे, एक दो के बिना समझ से हम सेवा नहीं कर सकेंगे, वो होगी तो मैं करूँगा, वो होगा तो मैं करूँगी आदि आदि आदि। तो माया के धोखे से वो बचे रहेंगे, वे बहुत कमाल कर दिखा सकते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहेंगे। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होकर करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। वो स्थिति भी हमारी इतनी ऊंची चाहिए, तभी तो सेवा में सफलता मिलेगी। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने, ये तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार ये सारा कार्य होना है। भगवान बैठ नहीं जाएंगे, वो तो वापस जाएंगे ये कार्य को संपन्न करके। थोड़े समय में हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त, सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में भी सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं, और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जा रहे हैं बच्चे, और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे बच्चे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको ये भारत भूमि बहुत प्यारी है, भारत भूमि जैसी कोई भूमि है ही नहीं, तुमको ये भारत भूमि बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए, भारत बहुत शानदार था। कल भी बाबा ने कहा ना, स्वर्ग वंडर ऑफ द वर्ल्ड था। भले दुनिया में 7 वंडर्स दिखाते हैं, वो तभी पुराने हो गए, लेकिन स्वर्ग का वंडर तो कोई बना भी न सके। भारत बहुत शानदार था, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटखिट की तो बात ही नहीं है, और कोई बातों में जाना नहीं है, बस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी ये चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए, जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन करें उसके लिए मीटिंग्स करते हैं। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो, ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। हमारी पांडव गवर्नमेंट ईश्वरीय गवर्नमेंट कम नहीं है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये रास तुम बच्चे जानते हो, कौन सा रास? कि पतित पावन बाप पावन दुनिया का हमको मालिक बनाते हैं पावन बनाकर। ये रास तुम बच्चे ही जानते हो। तो मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ये है, उसके लिए बाबा ने क्या किया है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचाए। रुद्र ज्ञान यज्ञ में हम बैठे हैं। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर के जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। बाबा ने हमको जगाया, अब हमारा फर्ज है औरों को जगाना। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। हाँ, बाबा जानते हैं, सेवा तो कर रहे हैं, बच्चे जगाते रहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। अब तक जिस जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था, इसलिए बाबा तो ड्रामा पर अटल है, वो ऐसा ही करेंगे जैसे कल्प पहले किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का योग जोर हो जाता है, कभी माया का जोर कभी ईश्वर का जोर उस रूहानी युद्ध में। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है और कभी कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना, लड़ाई के मैदान में भी तो ऐसा ही होता है ना, बेहोश हो जाते हैं। लड़ाई का मैदान तो है ना, माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। क्या दिखा है रामायण में, है ना, लक्ष्मण बेहोश हो गया। तो माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लवकुश की भी कहानी है ना, राम के दो बच्चे दिखाए हैं, यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे ये भी नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में इतने सोए हुए हैं, वे ये भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। हाँ, स्वयं भगवान आया है, ये नहीं जानते। बाप भारत में ही आते हैं, ये बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, उसमें तो कोई शक नहीं। भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं। तो ज़रूर शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो बाबा कहते हैं शिव का जन्म भी यहाँ ही हुआ है, तो ज़रूर उसने कुछ आकर के किया होगा। शिव जयंती मनाते हैं, शिव का यहाँ अवतरण होता है, तो ज़रूर शिव ने कुछ किया होगा। तो बुद्धि कहती है कि ज़रूर बाप ने आकर के स्वर्ग की स्थापना की होगी। छोटा मोटा काम थोड़ी किया होगा, बहुत बड़ा काम किया होगा, स्वर्ग की स्थापना की होगी। अब ये प्रेरणा से थोड़ी स्थापन करेंगे, कई समझ से उनको आने की क्या दरकार, वहाँ से प्रेरणा से ही कर सकता है सब कुछ, सर्वशक्तिवान है। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं हो सकता है प्रेरणा से वो स्थापना करें। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है, सब प्रेरणा से कैसे होगा। प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता है, प्रेरणा तो केवल संकल्प की बात है ना, तो उसमें आवाज तो कोई नहीं है, तो सिखाना पड़ता है, आवाज में आना पड़ता है। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, अब ये बात है ना, शंकर तपस्वी मूरत, वो प्रेरणा से वो तीसरी आँख खोल दे तो विनाश हो जाए। तो शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, परंतु इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। वैज्ञानिकों की बुद्धि तो बहुत चलती है, कैसे एटम बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, आपस में मिलते रहते हैं, तो इसीलिए कोई ऐसे नहीं बस ऊपर से प्रेरणा हुई और हो गया काम। परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है, तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उनों का पार्ट ही है मूसल बनाना, यादवों का काम ही है मूसल बनाना, वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा ये शब्द शास्त्रों का अक्षर है, प्रेरणा, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है, भगवान को आना पड़ता है। और शंकर का भी पाठ प्रेरणा की तो बात ही नहीं है, ये सब साइंटिस्ट लोग मिल करके ये सब बनाते हैं। अब इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है, ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है, ये सब ड्रामा में नोंद है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मूसल आदि काम में आए थे, बहुत प्रकार के अस्त्र दिखाते हैं ना, अग्नियास्त्र, वायुअस्त्र, तो वायु उसके तेजी गति से चलने वाले, अग्नि निकालने वाले, क्या क्या अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं महाभारत में। तो महाभारत लड़ाई में ये मूसल आदि काम में आए थे, जो पास्ट हो गया है वो फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहाँ एक धर्म होगा तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? वहाँ एक धर्म होगा, अभी इतने धर्म हैं तो बाकी सब धर्म कहाँ होंगे? ज़रूर विनाश हो जाएंगे, नहीं होंगे माना विनाश हो जाएंगे, तभी तो नहीं होंगे, ज़रूर विनाश हो जाएंगे, ये समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, ये तो ठीक है, अब बाबा शंकर की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, ये तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है, ये तो फिर रॉन्ग हो जाता है, कहाँ शंकर कहाँ शिव। शिव शंकर कह देते हैं, मिलाकर भी कह देते हैं शिव शंकर, क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते। हाँ तो शिव देखो क्यों मिला दिया है, क्योंकि शंकर कुछ काम नहीं करता, वो तो खाली तपस्या में दिखाया है, और वो भी काले ये कैलाश पर्वत पर दिखाते, अभी भी कहते हैं शंकर जी कैलाश पर्वत पर रहे, कोई फोटो भी उसमें दिखा देते शंकर जी कैसे तपस्या कर रहा है कैलाश पर्वत पर, क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है। काम तो शिव बाबा करते सारा काम, तो शंकर और शिव को एक कर दिया। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है, शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है, शिव परमात्माएं नमः कहते हैं, ये ब्रह्मा भी प्रजा पिता ब्रह्मा ठहराना, प्रजा पिता है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो बड़ी गुह्य बात है, लोग क्या समझेंगे ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है, मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं आए कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है, अगर कहते हैं कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं तो अभी कितना और पतित बनेंगे। वैसे कल की अवतार, हाँ भगवान का अवतार, ये सब अभी धीरे धीरे कहने तो लगे हैं ना, तो अभी 40,000 वर्ष और पड़े हैं तो अभी कितना और पतित बनेंगे, कितना दुख और सहन करेंगे। अभी इतना दुख है, 40,000 साल और चले तो कितना और दुख सहन करेंगे। कलयुग में सुख तो होगा नहीं, कुछ भी न जानने के कारण बिचारे घोर अंधियारे में हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। फिर बाबा बच्चों पर आते हैं, क्या आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बहुत बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है। मुरली में बाबा प्लान्स बताते हैं, फिर बच्चे आपस में मिले और फिर वो प्लान्स को कार्यान्वित करें। आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है, हूबहू ड्रामा चलता रहता है। नथिंग न्यू, सब कल्प पहले ऐसे ही हुआ था। ये हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं भी कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता रहेगा, चलता रहता है और चलता रहेगा। सेवा भी चलती रहेगी, अवस्थाएं भी ऊपर नीचे होती रहेगी, ये चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है, सेवा कैसे करते हैं बच्चे वो भी साक्षी होकर देख रहा है, और अवस्थाएं नीचे ऊपर कैसे होती है वो भी साक्षी होकर बाबा देख रहा है, वो भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं, बाबा उनको मदद भी करते हैं, प्रयत्न कराते हैं। तो बाबा क्या प्रयत्न कराते हैं, क्या मदद करते हैं? हाँ, मुरली में बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो। यही प्रयत्न है कि वो ग्रहचारी उतर जाएगी अगर बाबा की याद होगी तो। तो बाबा की मुरली पढ़ेंगे तभी तो बुद्धि में आएगा ना कि मुझे बाबा को याद भी करना है, तो ग्रहचारी उतरेगी। तो बाबा को याद करो, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बाप को याद करो, लेकिन फिर देह अभिमान में आ जाते हैं, इसीलिए ठोकरें खाते हैं। क्यों ठोकरें खाते हैं, क्यों विघ्न आते हैं? क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। अब ये भी देखो, बाबा कहते हैं बच्चों में देह अभिमान बहुत है, तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद में याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। देही अभिमानी रहो तो याद रहेगी, याद में रहेंगे तो फिर सर्विस की भी उन्नति होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे, पुरुषार्थी नहीं करेंगे, तकदीर में ही नहीं है। जिनको खुद कहते हैं, तदबीर करते नहीं, पुरुषार्थ करते नहीं, फिर खुद ही कहते हैं बाबा हमको धारणा होती नहीं। अब बाबा को कहते हैं बाबा हमको धारणा होती नहीं, बुद्धि में ही नहीं बैठता है। धारणा अगर नहीं होती तो फिर क्या होता है, तो खुशी भी नहीं रहती है। धारणा होगी तभी तो खुशी भी रहेगी ना। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है तो बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, बाबा ताकीद करते रहते हैं तो बच्चे फिर सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है, क्या है उसका, जो जो सेकंड बीतता है वो ड्रामा में नूंद है। सेवा के लिए बाबा ताकीद भी करते रहते हैं, बाबा सावधानी भी देते रहते हैं, फिर बाबा साक्षी दृष्टा हो जाते हैं कि बच्चों ने जो सेवा कल्प पहले की थी, जो धारणा कल्प पहले की थी वही करेंगे। तो बाबा कहते हैं वो ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। जो भी साधु संत महात्माएँ आते हैं वो किस पर भाषण करते हैं? गीता पर, रामायण पर, भागवत पर या महाभारत पर, कुछ भी। तो गीता, वेद शास्त्र, गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। पर उनों को ये पता थोड़ी है, गीता भागवत महाभारत वेद शास्त्रों पर भाषण तो करते, लेकिन बाबा कहते उनको ये पता थोड़ी है। क्या पता नहीं है उनको? ये पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझा रहे हैं। ये थोड़ी उनको मालूम है कि यहाँ क्या कार्य चल रहा है। वो तो अपने वेद शास्त्र गीता भागवत ही वो सुनाते रहते हैं। तो उनको ये पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। तो चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है, फिर बाबा चित्रों पर आते हैं, क्या अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझ नहीं सकते, उस समय प्रोजेक्टर भी बहुत चलते थे, पर बाबा को प्रोजेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं था। बाबा कहते थे, क्योंकि उस समय तो एलईडी तो स्क्रीन थे ही नहीं ना, तो वो प्रोजेक्टर पर तब दिखाई जब अंधेरा हो। अब अंधेरा करेंगे और समझाएंगे, मान लो तो कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है, समझ रहा है नहीं समझ रहा, पता कैसे चलेगा? आजकल तो ये एलईडी स्क्रीन्स है जो अंधेरा करने की भी ज़रूरत नहीं है और सब देख सकते हैं। पर उस समय तो ये था नहीं, स्लाइड्स से होते थे प्रोजेक्टर में, और वो स्लाइड एक एक करके डालते थे, फिर चित्र समझाते थे, सब अंधेरे में ऐसे ही था। तो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बाबा कहते हैं ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते हैं, प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं, और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो। अब प्रोजेक्टर पर दिखाएंगे, पूछ कैसे सकेंगे, और या वो भी पूछ कैसे सकेंगे, अंधेरा ही अंधेरा। तो फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। तुम इस पर समझा भी सकते हो चित्र दिखाकर। अब श्री कृष्ण के लिए तो ये कह नहीं सकेंगे कि वो पवित्रता का सागर, सुख शांति का सागर, लिबरेटर गाइड, हाँ उनके लिए तो नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। तो पहले लिखना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, प्रोब माना प्रश्नावली, गीता का भगवान कौन, पतित पावन कौन, ये प्रश्नावली बाबा ने बनाई। तो प्रोब लेना चाहिए वो प्रश्नावली पर, फिर उनसे पूछना चाहिए, फिर उनका उत्तर लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी चाहिए, सिग्नेचर लेना चाहिए कि आप बरोबर हम मान रहे हैं कि गीता का भगवान शिव है, बरोबर हम मान रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो सबसे फिर सही भी लेनी है सिग्नेचर। तो जैसे बाबा की मुरली चल रही थी ना, तो उस समय चिड़ियाँ आ गई। अब खिड़कियाँ तो खुली होगी, दरवाजे भी खुले होंगे हिस्ट्री हॉल के, तो चिड़ियाँ आ गई और वो चिड़ियाँ आपस में लड़ने लगी। आवाज़ होता है ना, चिड़ियाँ लड़ती आपस में, चू 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 चलती रही। यहाँ भी होता है ना, चू चू कभी कभी आ जाती है, वो तो हो जाता है। तो बाबा के तो चिड़ियाँ आपस में लड़ने लगी, तो बाबा को फिर थोड़ा शांत रहना पड़ा, क्योंकि आवाज़ बहुत हो रहा था चिड़ियों का। तो बाबा ने कहा, देखो इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा है, चिड़ियाओं में भी लड़ाई झगड़ा है, सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। पांच विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं। अब ये पांच विकार की जहाँ बात है, इसमें मनुष्य का मेन रोल है ना, जानवरों की तो बात ही नहीं है, वो तो इंस्टिंक्ट पावर है उनके अंदर, बुद्धि तो उस रूप से नहीं है जैसे इंसान में है। तो जानवरों की तो बात नहीं है, ये विशियस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। पांच विकार की जो बात है वो मनुष्यों के लिए गाया हुआ है, विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय, मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि है जो बिल्कुल समझते ही नहीं है। क्या नहीं समझते, इतने तमो प्रधान हो गए हैं कि हम कोई आसुरी संप्रदाय है, ये समझते ही नहीं है। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं हम नीच पापी हैं। आरती जब करते तो कितना धूमधाम से करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और उसमें क्या कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पापी, अपने आप को कहलाते तो है ना, तो परंतु समझते नहीं हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो कि कैसे सचमुच इस समय मनुष्यों में कोई गुण नहीं है, तो किस चित्र पर तुम ये समझा सकते हो? बाबा कहते सीढ़ी के चित्र पर, क्योंकि सीढ़ी के चित्र में बाकायदे लिखा हुआ ना, कैसे सतयुग में थे, फिर कलयुग अंत में कैसे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, उस पर लिखा भी हुआ ऊपर से, भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो मुख्य चित्र है सीढ़ी का चित्र भारतवासियों के लिए, ये है सबसे अच्छी चीज़। तो बाबा को सीढ़ी का चित्र उस समय नया नया बना था, त्रिमूर्ति गोला झाड़ तो था ही, लेकिन सीढ़ी का चित्र बाबा को बहुत पसंद आया, और फिर बाबा उसमें एडिशन कराते थे, अभी ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो। फिर लास्ट में उस समय भारत ने अमेरिका से बहुत ऋण लिया था, तो बाबा ने कहा वो भी डालो कि कैसे वो ये शैया पर लेटा हुआ, उस समय मोरारजी देसाई वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो खास भीख मांगने गया अमेरिका भारत के लिए धन मांगने के लिए, तो उसमें फ़ोटो में दिखाया है वो अमेरिकन, उसकी टोपी पड़ी है और वो भीख मांग रहा है भारत कि कैसे हमको धन दो, लोन दो। तो बाबा कहते हैं तो ये सब चित्र में, तो सीढ़ी के चित्र में सब डाला हुआ है। तो बाबा कहते हैं तो भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, ये सबसे अच्छी चीज़ है, इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है। फिर लिफ्ट दिखाई है कैसे एकदम नीचे तपस्या कर रहे हैं, और इस तपस्या के बल से कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, सीधा घर जा रहे हैं, फिर नई दुनिया में आ रहे हैं। बाबा कहते 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। ऊपर है फिर नीचे आते हैं फिर ऊपर चढ़ते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं, ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। अब ये विचार ही नहीं करेंगे, सर्विस के प्लान ही नहीं बनाएंगे, तो बाबा कहते हैं सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है, सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जा रहे हैं, हाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में तो नहीं जाते हैं। ट्रांसफ़र होने का मतलब ये नहीं कि एकदम कलयुग से एकदम सतयुग में चले जाते हैं, नहीं, पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा में हम सब पाठधारी है, ये नंबरवार समझते हैं। क्यों बाबा कहते हैं नंबरवार समझते हैं? क्योंकि साक्षी होके देखना होता है जब जानते हैं पाठधारी है, लेकिन ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या कौन क्या क्यों, उसमें अगर उलझे रहते हैं तो पाठधारी कैसे समझेंगे। कोई भी नाटक होता है उसमें जिसका जो पाठ होता है उसको बजाना है, वो आपस में क्यों 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 थोड़ी करते हैं, वही उनका पाठ है। तो क्यों क्यों अगर करते हैं, माना पाठधारी अपने को नहीं समझते, यही है कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं तो बाकी तुम्हारे में भी नंबर वार है जो अपने को पाठधारी समझते हैं इस ड्रामा के। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम पाठधारी है, वो तो समझते ये सब रियल है ना। हम लिखते हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तो वो बेसमझ हो गए, एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, ये आदि मध्य अंत ड्रामा का न जाने, तो बाबा कहते हैं वो तो बेसमझ हो गया। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है कि अगर लिख दिया कि बेसमझ है, तो बाबा कहते कोई हर्जा नहीं है लिखने में। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए बच्चों को, ये सब लिखना है। सर्विस सर्विस सर्विस, हाँ सर्विस सर्विस सर्विस। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है, जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है। और फिर बच्चों की बात, ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है वो बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, क्या बनने वाले हैं वो, सब राव बनने वाले, फिर वो रंक बन जाते हैं। कारण तो होता है ना, बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं कैसे पद भ्रष्ट करते हैं अपना। बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, अब नाम रूप में फंस गए तो पद भ्रष्ट हो गया। बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी खड्डे में डाल देगी। माया बड़ी धोखा दे देगी। आशिक माशुक यहाँ नहीं बनना है, एक दो के नाम रूप में फंसना माना जैसे आशिक माशुक, भले विकार के लिए नहीं आशिक माशुक, परंतु फिर भी नाम रूप में तो फंसे रहते ना, वो एक दो को ही देखते रहते हैं, बस वही उनको याद आता। तो बाबा कहते आशिक माशुक यहाँ नहीं बनना है। आशिक माशुक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। दो प्रकार के होते, एक तो विकार के लिए, दूसरे केवल बस एक दो को देखते रहे, बस यही बुद्धि में होता है। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है, कैसी प्रबल, जो माता के भी नाम रूप में फंस जाती है, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस जाती है। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है, इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी। ये बड़ी दीदी बहुत सावधान करती थी, बहुत सावधान करती थी, हमेशा सबको याद दिलाती थी, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, हाँ अकेले बाप को याद करना है, बस अकेले, बस कोई नाम रूप में नहीं फंसना, किसी भी देहधारी के आकर्षण में नहीं आना। ये कभी नहीं कि ना उसके बिना मैं ये कैसे करूँगी, इसके बिना मैं कैसे करूँगा, नहीं, अकेले आए। हाँ वैसे गीत भी इस पर गाते हैं ना, अकेले जाना है, ना हाथी होगा ना घोड़ा होगा, तुम्हें पैदल ही जाना है, तो अकेले हैं बस मैं और बाबा, और किसी को उस किसी में भी नहीं फंसना है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है, इसीलिए बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल फूल बनाने आए हैं, तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे। संशय अपने प्रति, दूसरे के प्रति, या बाबा के प्रति, ड्रामा के प्रति, किसी के लिए भी संशय आया तो बाबा कहते हैं फिर सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे, क्योंकि संशय बुद्धि बन गए तो जैसे स्थिति डावाडोल होती जाएगी, तो बाबा कहते हैं फिर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है, बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे, बाबा की मुरली नहीं सुनेंगे तो स्थिति तो एकदम डाउन चली जाएगी। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे, ये आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहे हैं। तो उस समय तो आत्म प्रकाश भाई दिल्ली में रहते थे, कृष्णा नगर में, और वहाँ बहुत बड़ी चित्रशाला बनाई थी और उनके पास बहुत आर्टिस्ट थे और वो पेंट करते थे, चित्र पेंटिंग से चित्र बनाते थे और बाबा को भेजते थे, फिर बाबा सेवा केंद्रों पर भेजते थे। तो बाबा आत्म प्रकाश भाई जो प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस के हैं, बाबा उसको याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है, बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे में तो बहुत अलग अलग प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस होती है, तो बॉम्बे वाले इनको और अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो उस समय रमेश भाई, उषा बहन और रतन मोहिनी दादी, प्रकाशमणि दादी, तो वो कैसे, मुझे याद है मैं गामदेवी सेंटर में जाती थी, कॉलेज पढ़ती थी तो शाम को जाती थी, तो वो आपस में कैसे सब दादियाँ और सब बैठ करके मीटिंग करते थे कैसे चित्र और बनाएं, तभी तो ये एग्जीबिशंस बने उस समय। तो बाबा कहते हैं मुख्य चित्र तो बॉम्बे वाले वालों को भी दिमाग में आना चाहिए कैसे और चित्र बनाएं, तो मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए, बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए, ऐसे कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रोम पर रखा जाए, सीढ़ी का चित्र एरोड्रोम पर रखा जाए, एयरपोर्ट पर रखा जाए, क्योंकि एयरपोर्ट पर होगा तो समय यात्रा कर रहे हैं, तो ये भी जैसे ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाना है, ये सीढ़ी का चित्र वो देखे एयरपोर्ट पर। ये चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। फिर तो आगे बाबा ने ये भी कहा था वो ऐसे चित्र हो जो ट्रांसलाइट के चित्र हो, जो वो चमके दूर से और फिर दिखाई दे दूर से। तो बाबा तो ऐसे ऐसे बहुत कुछ बनाया है, बहुत सेवा तो हुई है, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए, मुरली का सार, बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए, तभी तो याद भी रहेगी, सेवा भी करते रहेंगे, अपनी उन्नति भी करते रहेंगे। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, तुम बच्चे कहाँ हो, हम सब कहाँ हैं, लड़ाई के मैदान में, सावधान होते ना, लड़ाई के मैदान में नींद थोड़ी आती है, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो, माया रावण से तुम्हारी युद्ध है, माया बहुत विघ्न डालती है और बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए, माया के विघ्न से सावधान रहना चाहिए। दूसरा, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है, चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसे क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए, इस पर बाबा कहते हैं ये विचार करना चाहिए। तो देखो बाबा ने ये कब कहा था और आज हम देख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हो रही है, जो गवर्नमेंट भी समझ गई है कि ये इतनी सेवा कर रहे हैं। वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। सर्व सिद्धि स्वरूप भव कैसे होंगे? देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव कैसे होता है? जब हम देही अभिमानी बनते हैं, बाप से सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी ना। देही अभिमानी बनकर बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा कहते हैं विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया है ना। देह अभिमानी बाबा कहते हैं देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया। दिखाते ना कई राजा गोपीचंद वो कैसे सन्यासी बन गया, या कोई राजा ऐसे भी जो एक दो के कोई नाम रूप में फंस गए, अब उनसे विवाह किया तो राजा ही खत्म। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग कर नहीं सकते क्या? वो राजाओं ने अपनी राजाई छोड़ दी क्योंकि किसी के नाम रूप में फंस गए, तो राजाई कैसे करेंगे? वो राजाई के लिए तो कोई रानी वो उसी भी उसी घराने की होनी चाहिए। तो बाबा कहते उन्होंने तो अपना ताज तख्त भी छोड़ दिया, अंग्रेजों में बहुत था, ताज तख्त भी छोड़ दिया, किसी के नाम रूप में फंस गए उनसे शादी की। तो बाबा कहते हैं तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? उन्होंने देह अभिमान में आके किसी से देहधारी से प्यार करके अपना ताज तख्त खो दिया। तुम बाबा के खातिर हाँ देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते हो, इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएगा। एक बाबा से संबंध रखेंगे तो बाबा कहते इस एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन, क्रोध मुक्त बनना है तो क्या करो? क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। क्रोध क्यों आता है? बाबा ने कल भी बताया स्वार्थ, कोई स्वार्थ है, अब वो स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो क्रोध आया। और दूसरा कारण क्रोध आने का बाबा ने कल बताया ईर्ष्या, किसे ईर्ष्या है तो क्रोध आता है, हाँ वो मेरे से आगे कैसे जा सकता है, मैं तो ईर्ष्या आती है तो क्रोध आता है। तो स्वार्थ और क्रोध, स्वार्थ और ईर्ष्या ये फिर हाँ क्रोध लाते हैं। तो क्रोध मुक्त बनना है तो क्या करो? तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। स्वार्थ किस बात का, क्या चाहिए मुझे? तो निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो, जो इच्छाएं हैं उनके रूप का परिवर्तन करो। इच्छा का रूप कैसे बदलना है? मुझे ऊंच पद पाना है, मुझे बाबा का सच्चा बच्चा बनना, ये इच्छा है। बाकी वो इच्छा दुनियावी बाबा कहते हैं उसको बदलो। तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। ये अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। सारा महीना देखो बाबा ने इस पर कितनी सुंदर बातें बताई है। बाप के साथ आप सब ने भी पान का बीड़ा उठाया है। कौन सा पान का बीड़ा उठाया है? कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। ये पान का बीड़ा उठाया, पान का बीड़ा उठाना माना एक प्रतिज्ञा करना। तो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए क्या करना होगा? बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर एक बच्चा पहले लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से लगाव मुक्त, चाहे व्यक्ति से लगाव मुक्त। साधना को यूज करना और चीज है, हाँ, साधनों को यूज करना और चीज है, और लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। बाबा लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। साधनों को भल यूज करो, बाबा मना नहीं करते हैं। साधन तो जरूरी है, लेकिन अपनी साधना को मत भुलाओ। हाँ, तो लगाव अलग, साधनों को यूज करना और चीज है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। कल 25 अगस्त हमारी प्यारी प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का अव्यक्ति दिवस था। कल हम सब ने चारों तरफ देश विदेश में दादी जी के साथ अव्यक्त मिलन मनाया। सभी के सभी दादी के पास वतन में पहुँचे। हर एक ने अपने मन की शुभकामनाएं, अपने मन की भावनाएं बाबा और दादी के सामने रखी, क्योंकि कल शांतिवन में दादी के निमित्त विशेष कार्यक्रम था। तो हम सभी भाई बहनें, मधुबन के काफ़ी सारे भाई बहनें नीचे शांतिवन गए थे, इसलिए कल प्यारी दादी को हम सब ने सूक्ष्म में तो भोग स्वीकार कराया, प्यारी दादी से मिले। लेकिन आज हम सब मिल कर के वतन में जाएंगे और प्यारी दादी और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। जिन्होंने दादी प्रकाशमणि जी को नहीं देखा वो हाथ खड़ा करें। नहीं, ये तो देखे हुए वाले, नहीं देखा फिर से नीचे करो, नीचे करो हाथ। पहले मैं पूछूंगी जिन्होंने दादी प्रकाशमणि जी को देखा वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिन्होंने दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग रह के पालना लिए वो हाथ खड़ा करो। बहुत हैं। अच्छा, अभी जिन्होंने दादी, अभी ध्यान से सुनना, जिन्होंने दादी प्रकाशमणि जी को नहीं देखा है वो हाथ खड़ा करो। ये इतनों ने नहीं देखा है क्या? दादी को नहीं देखा है? हाँ, आज का दिन जो कल का दिन था 19 साल हो गए हैं। तो 19 साल मीन्स आप सभी कोई 18 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से ज्ञान में होंगे, फिर भी आप देखो या ना देखो, दादी ने तो आपको देख ही लिया है। बाबा दादी को यहाँ चक्कर लगवाते, ताली बजाओ। दादी तो आप सबसे मिलने के लिए आती हैं। तो आज भी हम सब यही संकल्प करेंगे, दादी के पास वतन में जाएंगे। दादी की जितनी महिमा करो उतनी कम है, क्योंकि दादी ने साक्षात साकार ब्रह्मा बाबा की पालना का विशेष एक एक को अनुभव कराया। और दादी तो सबको बहुत प्यार से अनुभव कराती थी। तो आज हम सब मिलकर के वतन में जाएंगे, प्यारे बाबा और दादी से मिलन मनाएंगे। जो जाएंगे वतन में हाथ खड़ा करो, जो बाबा के पास वतन में जाएंगे फिर से हाथ खड़ा करो। अच्छा, तो दादी जी के लिए तुम्हारे मन में ना जाने कितनी भावनाएं हैं, कितने उद्गार हैं। बाबा और दादी ने जो हम सबको इतना ऊंच बनाया या इतना सब कुछ सिखाया, हम उनका रिटर्न अभी तक तो नहीं दे सकते। हमें हमारे पास रखा ही क्या है, लेकिन बाबा और दादी क्या चाहते हैं कि जैसे बाबा संपन्न बने, दादी संपन्न बने, तो हमें भी इस कार्य के अंदर पूर्ण सहयोग देना है। अभी हम सब चलते हैं वतन की ओर, बाबा को दादी को भोग स्वीकार कराएंगे। और आज का भोग के दिन जो होता है, क्लास की टोली नहीं मिलती है, और आज खास भोग जो है वो जलेबी का बनाया, दादी को बहुत अच्छा लगता था तो जलेबी का बना, वो आप सबको भोग मिलेगा। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, उसके बाद आप सभी नाश्ते पर जाएंगे। जो भाई बहने शांतिवन से आए, एक रात के लिए हाथ खड़ा करो। अच्छा, शांतिवन से आए हुए भाई बहने ध्यान देंगे। आप सभी शांतिवन और सेवाधारी भट्टी के भाई बहने जो भी हैं, सबका सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन जो है ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है। नीचे वो बैठने की, खड़े होने की जगह नहीं है, इसलिए सभी को ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में जाना है। अच्छा, भट्टी के भाई बहने हाथ खड़ा करें। देखो हमारे बीच में मजलिस पाक की राजबहन, राजबहन हाथ खड़ा करो। हमारी राजबहन बाबा की लाडली, दादी की बहुत पालना ली हुई, बहुत टैलेंटेड है, स्कूल में टीचर थी और गीत कविता लिखना, कविताएं बहुत लिखती रही हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। तो भट्टी के भाई बहनों के लिए सब एक बार जोर से करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं बाबा के घर में आना। और कल भट्टी वाले आए, कई दिनों से तो बारिश नहीं थी, आज सुबह सुबह अमृत वेले से ही भट्टी के भाई बहनों को देखकर इंद्रदेव भी बहुत खुश हो गया है, तो आपका वो भी स्वागत कर रहा है। सबके पास छतरी है कि नहीं है, ठंडी तो नहीं लगी, ध्यान रखना। और जब आप चलें तो आराम से चलें, क्योंकि पानी गिरा होता है ना, तो पाँव का ध्यान रखना, धीरे धीरे चलो। और बाबा कहते अव्यक्त फरिश्ते की चाल में चलो। अभी हम क्या करेंगे, चलेंगे वतन की ओर, बाबा को दादी को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, उसके बाद सभी भाई बहने नाश्ते के लिए ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में जाएंगे। ओम शांति।
जा बाबा की सच्ची लगन से बन जा बाबा की तू गली को हार उड़ जा प्यारी वतन में नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के
छोड़ेंगे तेरी याद कभी न ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाए, यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते।
ओम शांति। आज विशेष प्यारी प्यारी दादी जी के निमित्त सब भाई बहनों की तरफ से स्नेह भरी यादों के साथ, जैसे मैं वतन पर मैं पहुंची, आप समझ सकते हैं हर एक के प्यार की भावनाएं वतन में पहुंचने से पहले ही बाबा के पास वतन में पहुंच चुकी थी। और वतन में आज की जो डेकोरेशन थी वो हर जगह अलग अलग थी, तो कुछ सेकंड के लिए मैं देख रही थी ये अलग अलग क्यों है, लेकिन बाबा और दादी दिखाई नहीं दिए, तो मैं शुभ संकल्प किया, बाबा दादी कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, तो दूर से क्या देखती हूँ कि बाबा दादी का हाथ पकड़ करके आ रहे हैं और दादी बाबा से कुछ बातें कर रही हैं, और नज़दीक आने के बाद बाबा और दादी बोले, देखो बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरे उलहने और मन की भावनाएं पहले से ही बाबा और दादी के पास पहुंच चुकी हैं, तो बाबा ने कहा, बच्ची आप देख रही हो ये डेकोरेशन में भिन्न भिन्न प्रकार के क्यों स्टार्स चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि बाबा बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाबा ने कहा, सुंदर तो हैं, हर बच्चे का शुभ संकल्प यथाशक्ति और यथा पुरुषार्थ और प्यार की भावना का जो शुभ संकल्प शुभ भावनाएं हैं वो आज वतन में बाप और बच्ची के पास पहुंच रहे हैं। बाबा ने भी देखा और बच्ची ने भी देखा। दादी देख रही थी, बहुत न्यारी और प्यारी लग रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची देखो ये सब क्या है। कहती हैं, बाबा ये आपके बच्चे, आपने सिखाया, आपने बनाया और उसी प्यार की भावनाएं बाबा के पास और सब सेवा साथियों के पास भेज रहे हैं। तो दादी बहुत न्यारी और प्यारी थी। तो मैंने कहा, बाबा आज अब दादी कुछ कह रही थी तो बाबा कहते, दादी से पूछो। फिर मैंने कहा, आज क्या किया? तो दादी ने कहा कि बाबा कुछ दिनों से मुझे पूरे विश्व का चक्कर लगवा रहे हैं। वैसे तो हम पहले से ही चक्कर लगाते हैं और जो स्थापना का कार्य है उसकी अंदर की गहराई और उसके परिवर्तन के बारे में सब एडवांस पार्टी वाले आपस में चर्चा करते हैं। तो अभी कुछ दिनों से बाबा मेरे को सभी तरफ चक्कर लगा रहे हैं, चाहे देश चाहे विदेश के सभी सेंटर्स पर चक्कर लगवाते हैं। कमाल है बाबा के बच्चों की, इनका प्यार पुरुषार्थ लगन को देख करके खुशी भी होती है और जो विश्व के अन्य मुख्य आधार मूर्त हैं उनके द्वारा उनके पास भी ले जाते हैं और बाबा और एडवांस पार्टी वाले हम सब मिल करके उनको ऐसी शक्ति और प्रेरणा देते हैं ताकि हमारी नई दुनिया के लिए वो पावरफुल कार्य करें और नई दुनिया के लिए विशेष साइंस को प्योरिफिकेशन करने के लिए भी उनको साकाश देते रहते हैं। तो दादी बहुत खुश थी बच्चों के पुरुषार्थ को देख के और दादी बार बार कहती है, कमाल है बाबा की और कमाल है इन लाडले बच्चों की। और दादी कहती, बाबा इन सब को वतन में इमर्ज करो। जैसे इमर्ज किया तो दादी सबको बहुत खुशियों में नचा रही थी और दादी सब के ऊपर ऐसे पुष्पों की वर्षा कर रही थी। कहती है, बाबा का हर बच्चा, छोटा बड़ा, नया पुराना, इतना वैल्यूएबल है, इतना बड़ा भाग्यशाली है जिसको बाबा ने अपनाया और बच्चों ने बाप को अपना बनाया। तो फिर मैं क्या देखती हूँ, बाबा दादी को देख रहे थे। तो मैंने कहा, दादी सब मधुबन वालों ने विशेष याद भी दी है तीनों स्थानों के, तीनों चारों स्थानों वालों ने, और भोग भी भेजा है। दादी बहुत खुशी में झूमने का, मधुबन बाबा का घर, हम सब के पालना का घर, हर बच्चे का घर। मधुबन के नाम से ही दिल के अंदर इतना उमंग आता है। जो मधुबन में आते हैं वो भी कितने भाग्यशाली हैं और मधुबन में आकर के कदम रखा, वरदान प्राप्त किए, वरदानों से अपनी झोली भरी। तो ये देख करके बाबा और हम सबको बहुत खुशी होती है। फिर जैसे मैंने भोग रखा था तो भोग रखा था और दादी को दिखाया, क्योंकि दादी भोग में भी बाबा के भोग के लिए विशेष ध्यान देती थी। तो दादी ने देखा और बहुत प्यार से कहा, मधुबन वाले तो कितने प्यार से सभी सेंटर्स पर तो बनाते ही हैं, मधुबन वाले प्यार से भोग बनाया है, तो दादी बाबा को खिलाने लगी और बाबा ने दादी को खिलाया और दादी कहती आज तो मैं सब मधुबन वाले और जो मधुबन में बैठे हैं सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराऊंगी। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो चारों ही स्थानों के भाई बहनों को बाबा ने मर्ज किया और जो वर्तमान समय मधुबन में चाहे भट्टी में है चाहे सेवा में है चाहे किसी कारण से आए सबको वतन में इमर्ज किया और दादी ने ऐसे करते सबको भोग स्वीकार कराया। फिर मैं क्या देखती कुछ सेकंड के बाद दादी के हाथ में एक गोला सा था, बहुत चमकता हुआ क्रिस्टल की तरह बहुत सुंदर चमकता हुआ था और दादी उसको ऐसे छिपा के खड़ी थी। तो मैंने कहा बाबा ये दादी के हाथ में क्या है? और बाबा कहते दादी से पूछो। दादी कहती बताओ बताओ। मैंने कहा कहती बताऊंगी जरूर लेकिन सबको मानना पड़ेगा करना पड़ेगा, अब मैं सबकी गारंटी कैसे लूँ। तो मैंने बाबा को कहा दादी को कहा दादी ये सब आपके सामने आप ही बात करो, मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकती हूँ। तो दादी ने ना एक जैसे बहुत सुंदर चमकता हुआ एक गोल गोल ऐसे क्रिस्टल का था लेकिन उसमें पास में छोटे छोटे गांठें बंधी हुई थी और वो लेकिन वो गांठें बहुत चमक रही थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा लगता है। दादी कहती ध्यान से देखो अच्छा लग रहा है, इसमें कितनी गांठें बंधी हुई है और कितनी उसमें लहरें लटक रही थी, रस्सियाँ लटक रही थी पतली पतली। तो मैंने कहा क्या करें। दादी कहती देखो दादी बाबा को चक्कर लगवाते हैं, एक तरफ तो दादी बच्चों के पुरुषार्थ को देख करके बहुत खुश है और सेवा के विस्तार को देखकर खुश है, समय नज़दीक आ रहा है सेवा बढ़ती जाएगी, लेकिन बच्चों के अंदर अभी भी कुछ न कुछ सूक्ष्म संकल्प है और वो सूक्ष्म संकल्प कभी मैंपन के कभी इच्छाओं के कभी बाबा से कहते बाबा आप ही कर दो, ऐसे ऐसे सूक्ष्म संकल्प जो हैं वो उनके पुरुषार्थ के अंदर देखने में चमकते हुए दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन वो सूक्ष्म संकल्प गोल्डन धागों की तरह उनको बीच बीच में रुकावट डालते हैं। तो जिसके कारण बच्चे जो उड़ना चाहे संपन्न बनना चाहे जो स्थापना का कार्य जल्दी हो उसके अंदर कभी ना कभी ऐसी बातें रुकावट नहीं स्लो कर देती हैं। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए दादी। फिर दादी ने ना एक छोटा सा ऐसे कमल पुष्प हाथ में लिया और वो कमल पुष्प की जो पंखड़ियाँ थी हर पंखड़ी के अंदर इतना सुंदर अलग अलग प्रकार के दृश्य आ रहे थे और कमल पुष्प के बीच के अंदर जो बीच का था उसमें एक बात लिखी हुई थी बाबा करण करावनहार है, बच्चे निमित्त और निर्माण होके चले, तू कमल पुष्प की तरह हर कार्य को सहज रीति से कर सकेंगे। बाबा ने कहा जैसे बाप ने बच्ची को पूरी जिम्मेवारी दी लेकिन बच्ची सदा निमित निर्माण निर्मल होकर के चली, बच्चे भी चल रहे हैं लेकिन बीच बीच में कभी कभी कुछ न कुछ संकल्पों की रुकावट उनकी स्पीड को स्लो कर देती है। फिर दादी ने जैसे वो कमल पुष्प दिखाया सबके पास पहुंचा लेकिन उसके बीच में बाबा का फोटो था, शिव बाबा और बाबा, और बाबा करा रहे हैं, बाबा का वरदानी हाथ ऐसे था, कहा कि बस बाबा ही कराने वाला है तो सदा वरदान और सफलता साथ हैं, इस भावना को अभी ज़्यादा बढ़ाना है। सेवा के विस्तार में कई बातें आएंगी, पुरुषार्थ में भी कई बातें आएंगी, लेकिन बाबा ही सब कर रहे हैं। बाबा का कार्य से वरदान और सफलता मिलेगी और हर कार्य सहज होगा। फिर दादी ने सबको ऐसे हाथ हिलाते याद दिया, कहा सब बाबा के बच्चे बहुत लाडले और प्यारे हैं, हमको तो हर एक बच्चा बहुत ही भाग्यशाली और लाडला दिखाई देता है। सदा सफल रहे, सफल करें, आगे बढ़ते रहें, ऐसे याद देते हुए फिर दादी ने सब मधुबन वासियों को विशेष याद दी। का मधुबन का भी बाबा बीच बीच में चक्कर लगवाते हैं और मधुबन वासियों के भी भाग्य को देख करके इतनी खुशी होती है कि ऐसे स्थान पर रह करके सेवा करने का मौका मिला है, तो सदा खुशी में बाबा ने जो भाग्य दिया है उसी स्वरूप में टिके। सबको याद दिया ओम शरण।